ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। समृद्धि, राष्ट्रीय हित और परिवर्तन को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का जोर। किसी एक कर्मचारी पर उठे प्रश्नों के आधार पर प्रतिपक्ष दल को गृहमंत्री का राजीनामा मांगना है अनुचित। प्रधानमंत्री का कथन, आगामी आर्थिक वर्ष के बजट विकासमुखी, महत्वाकांक्षी और प्रविधि को प्रोत्साहित करने के हिसाब से आया है। उद्योगी व्यवसायियों का प्रतिक्रिया, मानसून के आने के 24 घंटे के अंदर पूर्वी नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ से हुआ क्षति और अरुणाचल प्रदेश और असम में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से 14 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि नेपाल के समृद्धि, राष्ट्रीय हित और परिवर्तन को केंद्र में रखकर आगे बढ़ना होगा। आज नेपाल बुद्धिजीवी परिषद के 11वें राष्ट्रीय महाधिवेशन का काठमांडू में उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा न होकर राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि सही बात के समर्थन करने से झोले कहकर आलोचना करना और सभी क्षेत्रों में खोट निकालने के प्रवृत्ति से ऊपर उठना और विचलित न होकर राष्ट्रीय एकता और परिवर्तन का विचार रखने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि देश संक्रमण काल में है और सही रास्ता खोज रहा है। देश की ऐसी परिस्थिति में सुधार लाने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग का सक्रिय और नेतृत्वदायी भूमिका होना चाहिए। प्रधानमंत्री ओली ने राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि बताते हुए लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने के समय में पृथ्वी पथ के नाम पर राजतंत्र पुनर्स्थापना का बात उठाना अप्रासंगिक होना टिप्पणी भी किया। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि नेकपा एमाले विभाजन का असर से मुक्त होकर फिर से देश के लोकप्रिय पार्टी के रूप में स्थापित होने का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय हित और परिवर्तन के मुद्दों को केंद्र में रखकर आगे बढ़ा जाए तो आने वाले निर्वाचन में एमाले का एकल बहुमत आने का विश्वास भी व्यक्त किया। उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल ने कहा कि आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 के लिए सरकार द्वारा लाई गई बजट निर्माण के दौरान आधारभूत सिद्धांत, मूल्य मान्यता और सीमा को अनुसरण किया गया है। आज नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिज द्वारा काठमांडू में आयोजित बजट बाद के विचार विमर्श में उन्होंने कहा कि मेहनत के साथ काम करने पर राजस्व का लक्ष्य भी सहज रूप से पूरा कर सकने के हिसाब से निर्धारित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से प्राप्त हो सकने वाले सहयोग सीमा का भी ध्यान में रखकर बजट निर्माण किया गया है। ये बात बताते हुए उन्होंने कहा कि स्रोत अनुमान ठीक होने के प्रतिक्रिया मिला है, इसलिए इसके प्रभावकारी परिचालन से पूरा कर पाने का दावी किया। पूर्व अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा ने कहा कि पहले के ही निरंतरता के रूप में लाए गए बजट से अर्थतंत्र सुधार और नागरिकों के जीवन में समृद्धि दिलाएगी। राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्राध्यापक डॉ शिवराज अधिकारी ने बजट कार्यान्वयन में प्रमुख प्रतिपक्षी दल और निजी क्षेत्र द्वारा दिए गए सुझावों का आत्मसात करने का विश्वास दिलाया। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल ने कहा कि नेपालियों को विदेश में लगाने करने देने का विषय बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है, इसलिए उन्होंने महासंघ का सुझाव अधिकांश समेटा गया है। नेपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि कठिन परिस्थिति में आए बजट विकासमुखी और महत्वाकांक्षी होने के साथ ही आईटी और प्रविधि को ध्यान में रखने के विषय को प्रशंसा किया। नेपाल उद्योग परिसंघ के पूर्व अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल ने कहा कि लगानी मैत्री वातावरण और निजी क्षेत्र के मनोबल उठाने के हिसाब से बजट लाया गया है। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ के अध्यक्ष रवि सिंह ने कहा कि आगामी आर्थिक वर्ष 2082 के बजट समूह लक्षित न होकर समग्र में सभी क्षेत्रों को समेटा है। नेपाल में मानसून आने के 24 घंटे के भीतर पूर्वी नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में आए बाढ़ से क्षति हुई है। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के प्रवक्ता राम बहादुर केसी के मुताबिक आज सुबह आए भारी बारिश के कारण धरान धनकुट्टा सड़क खंड की सागुरी गढ़ी गांव पालिका वार्ड नंबर 6 स्थित नीचे के 100 मीटर सड़क लेवती नदी के बाढ़ ने बहा ले गया है, जिसके कारण कोसी राजमार्ग के धरान धनकुट्टा सड़क खंड अवरुद्ध हुआ है। ये जानकारी प्राधिकरण ने दी। धनकुट्टा होते हुए जाने वाले भोजपुर शंखुआ सभा तापलेजुंग पांचथर का यातायात ठप हुआ है। नेपाल प्रहरी के प्रवक्ता प्रहरी परिसर उपरीक्षक रमेश थापा ने कहा कि पूर्वी नेपाल के झापा तथा धरान धनकुट्टा सड़क क्षेत्र में आए बाढ़ व भूस्खलन के दुर्घटना हुआ है और उस क्षेत्रों में उद्धार तथा नागरिकों के सुरक्षा के लिए प्रहरी का टोली परिचालन करके विपद व्यवस्थापन का कार्य किया जा रहा है। नेपाल में मानसून आने के सरदर समय से 15 दिन पहले ही बिहीबार के रात से मानसून प्रवेश कर चुकी है। बारिश होने वाले प्रणाली अभी उत्तर की ओर जा रही है और बारिश होने की संभावना है, इसलिए आवश्यक सतर्कता अपनाने के लिए विभाग ने बुलेटिन मार्फत जानकारी कराई। आगामी 3 दिनों तक कोशी, नारायणी, कर्णाली, महाकाली और इसके प्रमुख सहायक नदियों के साथ ही कमला, बागमती, पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती और बबई नदी की जल सतह सतर्कता तह से नीचे रहने की पूर्वानुमान है, फिर भी बढ़ने की शंका है, इसलिए नदी तटीय क्षेत्रों के क्रियाकलाप में सतर्कता अपनाने का सभी से अनुरोध किया गया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ ने कहा कि नेपाल सरकार ने डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क DNF को उच्च प्राथमिकता दी है। जापान के राजधानी टोकियो में कल शुक्रवार को संपन्न हुए एशिया प्रशांत दूर संचार ATP 2025 मंत्री स्तरीय बैठक को नेपाल की ओर से संबोधन करते हुए मंत्री गुरूङ ने कहा कि अर्थतंत्र वृद्धि के साथ ही सुरक्षित, समावेशी और अवसर युक्त डिजिटल युग निर्माण करने की प्रयास की जा रही है। चीन के भ्रमण में रही पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और चीन के 13वां राष्ट्रीय जनक सिंह के स्थायी समिति के उपाध्यक्ष, चीनी अंतर्राष्ट्रीय समझदारी संघ के अध्यक्ष जी बिंगश्वान बीच गानसू प्रांत के डुनहुआंग शहर में भेंटवार्ता हुई है। भेंट में पूर्व राष्ट्रपति भंडारी ने कहा कि दो देशों के बीच के समझदारियों विभिन्न कारणों से क्रियान्वयन होने में विलंब हुआ है, फिर भी अब इसे आगे बढ़ाने में दोनों पक्षों को क्रियाशील होना चाहिए। कर्णाली राजमार्ग अगले 4 दिनों तक मरम्मत के लिए बंद रहेगी। कर्णाली राजमार्ग के खुलालू लालीघाट सड़क खंड आने वाले मंगलवार से 4 दिनों तक वाहन आवागमन पूर्ण रूप से बंद रहेगी, ये जानकारी सहायक प्रमुख जिला अधिकारी जनक शर्मा ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग जिले में बाना सिप्पा रोड पर हुई एक भूस्खलन की घटना में 2 परिवारों के 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि प्रदेश के जीरो कस्बे के शुक्रवार देर रात हुई भूस्खलन के एक अन्य घटना में 2 और लोगों की मौत हो गई है, उसमें भी भूस्खलन से 5 लोगों की जान चली गई है। ईस्ट कामेंग जिले में पुलिस अधीक्षक कमदम सिकोम के भूस्खलन की घटना में 7 लोगों के मरने की पुष्टि करते हुए BBC से कहा कि पुलिस को इस दुर्घटना की जानकारी शुक्रवार रात करीब 8 बजे मिली थी। वाहन में 7 लोग सवार थे लेकिन वह लापता थे। टीम ने लगातार बचाव अभियान चलाया और 31 मई को सुबह स्थानीय ग्रामीण की मदद से कई घंटों तक गहन खोज के बाद वाहन और मृत सभी लोगों को खोज लिया गया है। पुलिस के अनुसार मरने वाले सभी लोगों की शिनाख्त कर ली गई है। मृतकों में 4 छोटे बच्चे, समेत दो महिलाएं भी शामिल है। यह सभी लोग अरुणाचल प्रदेश के बिचोम जिले के बाना के किटचांग गांव के रहने वाले थे। राज्य के जीरो कस्बे में हुए भूस्खलन की जानकारी देते हुए डिप्टी एसपी ओजिंग लोगों ने राज्य आपदा टीम और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया था, लेकिन दो लोगों की मिट्टी में दबने से मौत हो गई है। असम के कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले में भूस्खलन के 5 लोगों की मौत होने की जानकारी मिली है। लगातार बारिश के बाद गुवाहाटी के बोडा इलाके के पास हुए भूस्खलन में मरने वाले लोगों में 3 महिलाएं भी शामिल है। असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में सरकार ने भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। गुरुवार की रात से लगातार हो रही बारिश के बाद गुवाहाटी में भारी जल जमाव हुआ है। जिले के चलते स्कूलों को बंद करना पड़ा है और सरकारी कर्मचारियों को विशेष छुट्टी देनी पड़ी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। समृद्धि, राष्ट्रीय हित और परिवर्तन को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का जोड़। किसी एक कर्मचारी पर उठे प्रश्नों के आधार पर प्रतिपक्षी दल को गृहमंत्री का राजीनामा मांगना है अनुचित, प्रधानमंत्री का कथन। आगामी आर्थिक वर्ष के बजट विकासोन्मुखी, महत्वाकांक्षी और प्रविधि को प्रोत्साहित करने के हिसाब से आया है, उद्योगी व्यवसायियों का प्रतिक्रिया। मानसून आने के 24 घंटे के अंदर पूर्वी नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ से हुआ क्षति और अरुणाचल प्रदेश और असम में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से 14 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।